Yang prabhajan tamano peitama peitse peityam dvaipayano atarya jivam putre pitanmayate atarvo himedu tam sarvabhutam tavai vasmi tvayabhina iti vidyaye tam nayamam cha. महाराज परीक्षित ने कौतूहल और उत्कंठा वशतः प्रश्न किया कि ये यदुवंशी कृष्ण के प्रिय हैं, ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करते हैं, वृद्धजनों की सेवा करते हैं, कोई यह धर्म का काम नहीं करते, उनको ब्रह्मशाप कैसे लग गया? यह परसों से हम लोगों का प्रसंग चल रहा है और उसी के उत्तर में ये बतला रहे हैं तात्पर्य क्या, कोई गंभीर विषय है और भगवान ने सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया कालरूप प्रभु की इच्छा ही प्रधान है, तब तू लीला करेगा। ये तो घबरा गए और बड़े दुखी हुए, किंतु कृष्ण के स्वधाम गमन करने का रहस्य ये जानते थे, ये रहस्य जानते थे, इसलिए ये दुखी नहीं हुए। उनको सांत्वना देते हुए परीक्षित महाराज तो दुखी हो गए, आज सुखदेव गोस्वामी उनको सांत्वना देने लगे और संतना देते हुए ये सब अपना रहे हैं। ये संभव नहीं, अभी प्रसाद यादवों को लग गया और कृष्ण को लग गया, ये संभव पर नहीं, किंतु हुआ तो कैसे हुआ? इस प्रकार मर्मदायक विचार एक वांछित प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी दिया, राजन ईश्वर की इच्छा ही सब कुछ आए हैं, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी का भूभार हरण करने के लिए वो काम हो गया, अब थोड़ा सा बाकी था उसको भी संहार करके अब ये अपने धाम में जाएंगे। इसकी दो दृष्टि है, पहले व्यास बतलाया भगवान की इच्छा ही सब कुछ है, वे काल रूपी हैं, एक ही भगवान की इच्छा के अंतर्गत बहुत सी चीजें हैं, वो अपने आप आ जाती हैं। कजे कैसे संहार कार्य तो है, दैत्य दानवों का नाश करके धर्म की प्रतिष्ठा की, भूभार हरण किया, अब कृष्ण के दो प्रकार के परिकर होम वृंदावन होम द्वारका में है, एक तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि नित्य कृष्ण के परिकर हैं, देवकी वसुदेव इत्यादि जितने हैं द्वारका के वो इनके परिकर हैं। और दूसरी बात, इन्हीं लोगों में प्रवेश किए हुए या पृथक रूप से देवता लोग हैं, अपने अंश में भगवान की सहायता करने के लिए उनकी पत्नियां गोपियों की सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए वो अवतरित हुई थी। भागवत में ऐसा देखा जाता है। समझ रहा है? ठीक है ना? ये यू आर अंडरस्टैंडिंग फाइव समथिंग ब्रह्मावेंट तो फिर सागर एंड ही वाज समाधिस्त एंड ही हर्ड द वॉइस ऑफ क्षीरोदसाई विष्णु एंड टोल्ड दैट माय प्रभु हैड नोन ऑल दिस थिंग, वेरी सून ही विल कम इन द जदु डायनेस्टी, सो ही हैज टोल्ड दैट ऑल द डेमिड गॉड्स टू सेंड देयर वाइफ्स देयर टू सर्व गोपी एंड हिमसेल्फ दे शुड ऑल गो एंड सर्व कृष्ण एंड ही यशोस। ठीक है ना? उपजन्यता तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध सात्यकी और ये जितने भी हैं वो कृष्ण के नित्य परिकर हैं। शांब वो कृष्ण जैसे सचिदानंद है, वो भी सचिदानंद है, उनके ध्वंस का कोई संभावना नहीं, वो ध्वंस नहीं होंगे। दूसरी बात, देवता जो लोग आए थे देवभर, जैसे द्रोण धरा वो नंद बाबा में मिले, वैसे जितने देवता हैं वो लोग भी सब इन लोगों में मिल गए और कृष्ण की सेवा और सहायता करने लगे लीला में। जब लीला संगोपन करने की इच्छा हुई तो अपनी जोग माया के प्रभाव से उनमें से प्रद्युम्न शाम इत्यादि में से उन देवता पर को निकाल करके देवलोक में भेजा और प्रद्युम्न इत्यादि के साथ में जैन कहा द्वारका तमित पूरी जत सन नहीं तो है अप्रकट हो गए। अप्रकट अंतर ध्यान हो गए। कैसे अंतर ध्यान हुए? जैसे शाम हो जाती है और सूर्य छिप जाता है अपनी रश्मियों के साथ में, अणु रश्मियां होती हैं उन सब के साथ में छिप जाता है, नष्ट नहीं हो जाता, उसका तिरोभाव नहीं हो जाता, जगत के दृष्टि से जहां लोग देख रहे थे वहां से उनका तिरोभाव हुआ और कहीं नहीं कहीं वो सूर्य हैं। इसलिए कृष्ण तो वहां से अपनी लीला और परिकरों के साथ में अंतर ध्यान हुए, किंतु कहीं नहीं कहीं विश्व ब्रह्मांड में, कोटि कोटि ब्रह्मांडों में कहीं कहीं उनका लीला जहां प्रकट हो रही है और गुप्त रूप से इस द्वारकापुरी में भी है, किंतु इसको किस रूप में दिखलाया? बड़ी चतुरता के साथ में दिखलाया। जैसे कि बतलाया शाम अनिरुद्ध सात्यकी ये सब लोग भगवान के परिकर हैं। जब ये लोग गए हैं सोम तीर्थ में, कौन प्रभास में, कृष्ण ने कहा कि देखो द्वारका में बड़े उत्पात हो रहे हैं, अब यहां नहीं रहना उचित है। और उसके पहले ये बतलाएंगे, अभी देखो एक बात करो, हम लोग शाम जब ऋषि को बतलाया था कल जो ऋषि लोग वहां आए, अत्रि अंगिरा वशिष्ठ नारद दुर्वासा इत्यादि बहुत से ऋषि लोग आए और यज्ञ करा करके वहीं पर गए, कौन तीर्थ पिंडारक तीर्थ में वहां पर गए। और भगवान की काल शक्ति ने कृष्ण के पुत्रों के भीतर में घुस गई और उन्होंने शाम्ब को लड़की बना दिया और उसके कपड़े इत्यादि दे करके या तवा क्या दिया ऊंचा कर दिया और लड़की बना करके वो एकदम लड़की जैसे हो गए। और ये उद्धत लड़के सब उन ऋषियों के पास में गए, क्या बुद्धि हुई, इनकी परीक्षा करें ये कुछ जानते हैं या नहीं, झूठ मूठ के ये ऋषि बने हुए हैं। उन्होंने कहा ये लड़की आसन्न प्रसवा है, बड़ी लजालू है, लजाती है, बोलती नहीं, ये जानना चाहती है इसके पेट में गर्भ में बच्चा है या बच्ची है, लड़का क्या है। एक बार नहीं, एक बार सुना तो उपेक्षा कर दिया, दो बार कहा तो उपेक्षा कर दिया। नारद और व्यास और अत्रि इत्यादि तो जरा शांत रहे, किंतु बार बार पूछने पर दुर्वासा को क्रोध हो गया। उन्होंने कहा जी इसके पेट से क्या जदुवंश नाशक मूसल पैदा होगा, यू नो मूसल, व्हाट इज मूसल, इन वेस्टर्न कंट्री दे यूज क्लब मीन्स गदा, नो मूसल, जदवंश ध्वंसकारी मूसल पैदा हो। देखा खोल करके चले गए वहां से, बड़े डरे और खोला देखा ये मूसल ही उसमें है। आप तो कृष्ण से बहुत डरते थे इसलिए महाराज उग्रसेन के पास लड़के गए और गुरु उग्रसेन से दिखलाया जी ऐसी ऐसी बात हुई, हमने ऋषियों के साथ में दिल्लगी की और उन्होंने अभिसंपात दे दिया, ये उन्होंने बहुत अफसोस किया। अब होनी क्या किया जाए, उन्होंने मूसल को जला करके राख कर दिया, मूसल को लकड़ी जो थी उसको जला दिया और लोहे का जो शाम्ब था उसको घिसते घिसते चूर्ण बनाया और उसमें से जो चूर्ण नहीं हुआ अंत में वो तीन कोना रह गया, छोटा हाथ में पकड़ में नहीं आया, उसको लेकर के और उस राख को और ये चूर्ण सबको समुद्र के बीच में फेंकवा दिया। अब उस समुद्र से तरंगे आई, ऊपर में जो राख बह रहा था और चूर्ण जो था वो तो किनारे में आ गया और किनारे में एरका बन, एरका माने सरकंडे का, वो वहां पर हो गया और जो तीन कोना छोटा सा था उसको एक मछली निकल गई और दो एक दिनों के बाद में वो मछली एक जर नामक धीवर उसने पकड़ लिया और जब देखा तो उसमें से वो निकला तो उसने मछली के पेट से उसको निकाल कर अपने बाणों में लगा दिया। यहां तक तो हो गया, बाणों में लगा देने के बाद में इधर में अब क्या होता है, कृष्ण कहते हैं कि ये द्वारका में बड़ी अशुभ ये सब दिख रहे अपशगुन, मेघ से बिना मेघ के रक्त की धारा बह रही है, पशु रो रहे हैं और सब देख करके बड़े विस्मित थे। कृष्ण ने उनको बुला करके कहा ये अशगुन हो रहे हैं और द्वारकापुरी हमारे समय से इसमें रहना ठीक नहीं, हमारे साथ में चलो, कुछ अशुभ संकेत दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ कर्म में कुछ असुविधा हुई है, इसलिए हमारे साथ में चलो और पिंडारक तीर्थ में हम लोग यज्ञ करेंगे और यज्ञ से देवताओं को और सबको यज्ञपति को प्रसन्न करेंगे और उनका प्रसाद लेंगे, इस प्रकार से हमारे जो कर्म दोष है वो दूर हो जाएंगे। एक मिनट ठहरना उचित नहीं है, ये कह करके और बाकी जो वहां पर उनके वंशज थे, पिता माता और सब, उनको कहा जाए यहाँ रहना उचित नहीं है। पांडव लोग आएंगे अर्जुन और उनके साथ में इंद्रप्रस्थ चला जाना, हमारे बाद में यहाँ पर समुद्र चारों तरफ में छा जाएगा, इसलिए यहाँ एक मिनट की देरी करने की जरूरत नहीं है। और उनको लेकर के ग्रहों की उपग्रहों की शांति करने के लिए पिंडारक तीर्थ गए, वहां जाकर के यज्ञ किया। नहीं, रानी को तो भेज दिया, वो क्या एक नाम दिया है इसे। ठीक है, वो उसमें कौन गई क्यों नहीं, उसमें दिया गया है ऐसा, उसके बाद में पीछे से उन्होंने बतलाया कि कौन गया कौन गया, अर्जुन का बाण धनुष चला नहीं और सब, तो वो पीछे पिता। तो क्या कह रहा यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद में देवताओं को शांति के लिए दान दक्षिणा सब दिया और उसमें योग माया के प्रभाव से जो साधारण लोग हैं भक्ति रही उन लोगों की दृष्टि में योग माया ने ये दिख लाया कि मैरे मधु का पान किया और पान करके बुद्धि भ्रष्ट हो गए और परस्पर अस्त्र शस्त्र लेकर के परस्पर लड़ने लगे, इसके बाद में लड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र जब खत्म हो गया, घोड़े टोड़े खत्म हो गए, तो उन्होंने बलदेव जी पर भी अस्त्र धारण किया और बलदेव जी को ऊपर में अस्त्र छोड़ा और कृष्ण के ऊपर में भी लोगों बलदेव प्रभु जी समुद्र के किनारे बैठ करके ध्यानस्थ हुए और अंतरित होकर के चले। कृष्ण कुछ देखा जो शोक में मग्न है, बड़े गंभीर हो गए और गंभीर होकर के एक पेड़ के नीचे दाहिने पैर पर बायां पैर रखकर उसका लाल तलवा है वहां बैठ रहे हैं। उसी समय थोड़ी देर के लिए उद्धव जी आए उनको साथ समझे, इधर उद्धव लोगों ने परस्पर एक दूसरे को मारा और मार करके सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। जब वो जदुवंश ध्वंस हो गया तो कृष्ण बैठे पेड़ के नीचे और वही बहेलिया जरा नामक ब्याह संधान किया, कृष्ण के पैरों में लगा। उस समय श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में बैठे हुए थे, जब वो बाण मारा तोड़ करके गया, देखा कि कृष्ण उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, रोने लगा जी हमने क्या किया। कृष्ण ने कहा जी मेरी इच्छा से हुआ, तुम चिंता मत करो, अभी तुम स्वर्ग को जाओ। तो उसे विमान पर रख करके स्वर्ग में भेज दिया, सशरीरी चला गया और कृष्ण वहां पर बैठे रहे। और ये लोग मर कट करके क्या हुआ, सब खत्म। अब इसको दिखलाया है, कैन यू टेल ऑल दीज थिंग्स और आई शुड स्टॉप, बेटर यू शुड कंप्लीट। इधर दिखलाया कृष्ण की दो प्रकार की माया, योग माया महामाया। जो परिकर हैं वो तो कृष्ण के साथ ही में अंतर्ध्यान हो गए, और महामाया के द्वारा दिखलाया क्या जो नहीं हुआ उसको दिखलाया। वास्तविक में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, और सशरीर देवता लोग उसमें से निकल करके स्वर्ग में पहुंचे। उसमें साधारण लोग जो भक्त नहीं थे उन लोगों ने देखा, जो मार काट हुई, मेरे रस पिया और कुछ हुआ और सब लड़ कट करके मरे, और फिर उनका दाह संस्कार भी किया गया, ये तो देखा। और कृष्ण ने बहलिए को बाण मारा, वो भी मर गए। यहां तक कि टीकाकारों ने कहते हैं कि शौनक आदि ऋषि और पराशर ऋषि भी शुद्ध मत को ग्रहण नहीं करके उन्होंने दिखलाया कृष्ण का संहार और जदुकुल का संहार दिखलाया, अपने अपनी संहिता में या कहां, वो लोग भी इस चीज को नहीं समझ सके। केवल जो शुद्ध भक्त हैं योग माया के प्रभाव से उनको ये नहीं दिखाई दिया, और बाकी सब लोगों को, विपक्ष लोगों को जो भक्ति रहित हैं उनको ये सब दृश्य देखने। शरीर ही कृष्ण के साथ में वो लोग अंतर्हित होकर के द्वारका में ही रह गए, और देवताओं को निकाल करके इसी प्रक्रिया से स्वर्ग में भेज दिया। क्लियर हो?
Srila Gurudev is continuing to explain the first chapter of Srimad Bhagavatam, canto 11. At the beginning of this chapter, Sri Parikshit Maharaj is posing a question to Shukadeva Goswami. Yadavans, Krishna's own dynasty, they are all very well behaved. They give respect to the Brahmanas and they honor the elderly persons and they follow religious principles. So, how is it possible that the Brahmanas could give them a curse by which they would be destroyed? So the answer is very profound. Shukadeva Goswami replied that the Icha of Prabhu, that means the desire of the Supreme Lord, how Kal Rupi, in the form of time, has done all of these things. Or this answer, it could make one become sad. But Parikshit Maharaj, he knew the mystery. Shukadeva Goswami knew the mystery. Shukadeva Goswami knew the mystery of Krishna's Swadharma, his nature, and his way of behavior. So he explained to Parikshit Maharaj.
खड़े होकर बोलेगा
Shukadeva Goswami, he knows the mystery of Krishna's disappearance, so he was not upset. But Parikshit Maharaj, he was hearing this somewhat sad. So Shukadeva Goswami part is consoling him by explaining all of these things. So the devatas had prayed for Krishna to come to this world and remove the burden of the earth. Now, at this point in his pastimes, Krishna had removed the burden of the earth. Only something was left. That is his own dynasty. So Krishna, now he completed his mission. One of the reasons that he'd come to this world. So it was time for him to make his pastimes become unmanifest. So Krishna, he has two types of associates. Prajumna, Sambha, Anirudha, and others, they are his Nitya Parikar. that his eternal associates would come from the Nityadham, Dwarka, and then manifested in this world. They are like Krishna, they are Satchidananda. Their forms are completely transcendental, Satchidananda Vigraha, and therefore they cannot be destroyed by anything or anyone. Then there is another type of associate. The Devatas have also appeared along with Sri Krishna. Why? Because when Prithivi Devi, Mother Earth, in the form of a cow, came to Lord Brahma, then Lord Brahma took her, along with other demigods, to the shore of the ocean of milk. And they prayed to Hiranyakashipu Vishnu, but he didn't give an answer. Then Brahmaji, in Samadhi, in his trance, he received a message from Hiranyakashipu Vishnu, who told him, "Oh, my Prabhu, that is Krishna. He knows everything that's happening, and he's about to appear in this world. So, all of you devotees and your wives, you should take birth on the earth planet now, in the Vrishni dynasty and the Yadu dynasty, and you can assist Sri Krishna." So, one type of associate, they are Nityabharikas, and another type of associate, they are devotees who have appeared in this world in order to assist Sri Krishna. Some of them have appeared separately, and some of them have entered into the Nityabharikas of Sri Krishna. So, in Sama, Adiruddha, and all of them, the Nityabharika, some devotees have entered, and some devotees have also appeared separately from the eternal associates. Some of them appear in the Yadu dynasty, that also means among Rajagopis, the wives of the devotees. So, when Prajumna, and the all the devotees in the first group, the Nityabharikas, when they disappeared, what was the nature of their disappearance? The nature of their disappearance is exactly like the setting of the sun. The sun is never destroyed. Only it disappears from our vision. And somewhere else on the planet, it appears to the vision of people there. So in the same way, Krishna and his eternal associates, they disappeared from this world. But somewhere else in another universe, they were appearing again. And not only that, but even in this universe, they were still present, but in apricot form, in a hidden way, in an unmanifested way. So, the sages, Atri, Angira, Vashishta, Vishwamitra, Narada, Durvasa, Kandarishi, and all the great rishis of the world, they came to Dwarka and they did one yajna there. Afterwards, from there, they went to a place close to the ocean called Pindaraka. Pindaraka. So, when the rishis were in Pindaraka, Samba, and what is it? So, at that time, Samba and the other boys of the Yadu dynasty, they went there to Pindarak and they disguised Samba as a woman and they brought him in the disguise of a woman before the sages. What was their mentality at that time? They wanted to test the sages. Of these sages, are they omniscient or not? Can they understand that we're joking or not? So they came with a mood to test them. So, with Samba dressed up as a woman, some of the other boys, they approached the sages and said, "Oh, this young lady is pregnant, and she is very shy, but she has a desire to know whether she will give birth to a son or to a daughter. Can you give an answer?" So the first time the boys asked this question, all the sages are very grave. And they understood everything, so they didn't know what to reply. And they neglected, they ignored the boys. Again the boys asked the same question. Again they neglected. Again, third time they asked the question. So Narad, Vashishta, Vishwamitra, other sages, they can tolerate. But Durvasa, we cannot tolerate. So Durvasa Rishi, he became disturbed. And he gave a curse. He said, Oh, she will give birth to one musha. Musha. Musha means vessel. If you want to grind some spices, then you need one kind of, like a club, which is used for crushing and smashing spices. She said, she will give birth to one vessel. And this vessel will destroy your whole dynasty, all young dynasty. So when this happened, all the boys were very regretful about what had happened. And they didn't go with Krishna, but they went to Ugrasen, the emperor of the Yadu dynasty. So Ugrasen, he gave instructions that this vessel, it should be put in fire. And then afterwards, it should be ground down into powder. And then the powder should be thrown in the ocean. So the vessel was ground into powder, and there was one small piece left. This wasn't ground, it was thrown in the ocean with all the iron filings. So that time, the ground vessel in very small pieces were floated in the ocean and washed up upon the beach in Prabhasketra. So those small pieces of iron, like seeds, they began to grow. And they grew into very sharp reeds or canes, iron canes growing on the shore of the ocean. And the small piece was swallowed by a fish. And this fish was caught by a hunter. And then Hunter Jara, he opened the fish and found the small piece of iron inside. And he thought this would be good to use as the head of an arrow. So he applied it to one, the shaft of an arrow, and he made an arrow from it. So, at that time, Krishna and his associates were in Dwarka, and there were many inauspicious omens. Animals were braying and crying. And
blood was coming?
Blood was raining, water was not raining in the sky, blood was coming from the sky. So seeing all these inauspicious omens, Krishna told his associates, we should not stay here. This is very auspicious. You should come with me, and we'll go to a holy place, Prabhas, and we'll do yajna there. And we'll please all the yajna parties, that means all the presiding devotees. It seems that they've become upset, angry. So all the Pandavas, without delay, you should all come with me at once. So then Krishna and all his associates, they went, and they performed a yajna. And after performing yajna, they gave charity, and they tried to pacify all the devotees. But then what happened? Yogamaya showed to the people who have ordinary materialistic vision a very astonishing pastime, that the members of the Yadu dynasty, they drank some rice wine and became... So, Krishna told the queens of Dwarka that...
Not queens.
He's telling Krishna told the queens of Dwarka they should stay behind managers, and Arjuna will come.
To the manager.
Mm-hmm.
There were so many managers, Senapati and others.
Mm-hmm.
To them told.
So, Gurudev explained that Krishna, he spoke to the Senapati.
Senapati are all managers.
Managing. The politicians who are managing in Dwarka, that the Dwarka will go in the ocean. So Arjuna will come, and the queens of Dwarka should go with Arjuna to Hastinapur. So then, the men of the Yadu dynasty, who had come to Prabhas, they became intoxicated, and their intelligence was completely destroyed. A quarrel broke out among them, and they began to fight with each other. Their weapons were broken, so they took the iron reeds which had grown on the shore of the ocean and began to kill each other.
And it became like Vajra.
Uh-huh.
Those iron reeds, we have explained, they are stronger than thunderbolts, and they began to kill each other. So at that time, Baldev Prabhu came on the shore of the ocean and became absorbed in meditation.
He came to
kill Baladev.
came to us, oh, you should stop, why you are quarreling? And then they began to attack Baldev.
And Baldev killed
someone. Even Krishna.
Yes.
So Baldev and Krishna tried to stop them, but they began to fight with Krishna and Balaram also. Then Balaram, he was meditating on the shore of the ocean.
And he saw that all are quarreling and even attacking him. He sat on the shore and he came in samadhi. And he went in shesh room.
Form of shesh.
So when Baldev was meditating on the shore form of the ocean, he went into samadhi. Then he assumed the form of shesh nag, serpent, and entered into the ocean and disappeared. Then Krishna, he went and sat very peacefully beneath the tree. And at that time, Uddhav, he came there and he delivered the news to Sri Krishna that all of Krishna's dynasty had been destroyed. So just then, the hunter Jara, who had taken the remaining piece of the pestle, put it on the Shatrughna's arrow. He shot the arrow, and the arrow went into the foot of Krishna. So Krishna manifested a four-handed form. And Jara, the hunter, saw this, and he came. And he gave pranam to Krishna. And he was weeping. But Krishna consoled him. Don't be disturbed, and gave him a blessing that at once he could go to heaven, and that there and then that hunter Jara at once went to Swargalok, to the heavenly planets. So in this lila, Krishna manifests two types of maya. One is yoga maya and one is mahamaya. Those who are under the influence of yoga maya, they are the Shuddha Bhaktas, the pure devotees. They saw that Krishna, along with all of his associates, they left this world. There was no fighting. There was no quarreling. There was no killing and no death. But rather, the Nitya Parikas, the eternal associates of Krishna, they returned to the Nitya Dham, and the Devatas who had entered into the bodies of the eternal associates.
Where was Nitya Dham? They returned?
Dwarka.
Dwarka was there?
In the Aprakat.
Aprakat. Never went here and there. They have become apricot with Krishna.
They have disappeared from all
this. So, Vaikuntha Pathiya Dina.
Who went Vaikuntha?
Others, those who were in Krishna, his manifestations. Or they were sent to Vaikuntha and their own places.
So then all the incarnations were in Krishna. They went to Vaikuntha. Krishna entered into his Apakat Lila and manifest pastimes. And the Devatas who had entered into the associates of Sri Krishna in Dwarka, they came out from the bodies of those associates and returned to their posts in the heavenly planets. So the pure devotees, they could see this. But others who are not under the shelter of yoga maya, who are under the shelter of mahamaya, the mature energy, they were bewildered. And in their bewilderment, they saw that all had fought with each other and died, and Krishna was even killed by the hunter, and he also died.
बहुत सी चीजें याद आ रही है कहने की, लेकिन तो समय नहीं. धीरे-धीरे कहें.
कहाँ का बोलना है? हाँ.
बोले महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के यहाँ प्रश्न कर रहे हैं. प्रश्न के उठता है दो चीज को, एक जानने के लिए, एक संशय के लिए. इनको संशय तो था नहीं, किंतु जानने के लिए उनसे पूछा. यह जदकुल मूसल कुलनाशनम, मूसलम कुलनाशनम, ये विप्र साप पूर्ण होने पर भगवान अंतर्यामी किस रूप से तन त्याग किया, ये प्रश्न है. कह रहे हैं
Brahma Sapo Sampriste Swapule Jadavarsava Prayasi Sarvanetranam Tanu Sa Katham Atyaja. ये एकादश स्कंद के तीसवें अध्याय का ये श्लोक तीसवें अध्याय इसका अर्थ यह है ब्रह्म शापे अपने समस्त जादव कुल के उपसंहार काल उपस्थित होने पर जादव श्री कृष्ण ने अखिल प्राणियों के मनोहारिणी अपने तनु का किस प्रकार से त्याग कर ले असंभव ये उनको लग रहा। कृष्ण का शरीर कैसा है? अप्राकृत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका तनु और वे अलग नहीं है, भेद नहीं है। तो तनु त्याग करना माने अपने को त्याग करना, यह संभव पर नहीं है। ये कैसे हुआ? तनु त्याग तो हुआ, किंतु इसका तात्पर्य क्या है? अच्छा, कृष्ण का शरीर तो गुणमय नहीं है। सुनो, कृष्ण का शरीर गुणमय नहीं है, त्रिगुणमय नहीं है। सत्तर तमने विशुद्ध सत्व स्वरूप, उसका त्याग तो संभव पर नहीं हो सकता। कौन त्याग करेगा? वो तो खुद ही है, कौन क्या त्याग करेगा? नहीं त्याग कर सकता। आ समझिए, उनका तनु तो सचित आनंदमय स्वयं ही है। वो देह देह भेद नहीं, देह ही है वो, देह भी वो है। उसका त्याग संभव पर नहीं है। अपने हाथ में लाठी है, उसे त्याग कर दें, किंतु अपना क्या त्याग करेंगे? लाठी तो छोड़ दिया, चश्मा छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, अपने को कैसे त्याग करेंगे? अच्छा, सचिदानंद होने के कारण अखिल लोकों के नयन के में निविष्ट अनुरक्त है। ब्रह्मा जी स्वयं शंकर और ऐसे ऐसे भक्त लोग व्यासदेव नारद देव ये निर्गुण है वैष्णव। तो सगुण यदि कृष्ण का शरीर त्याग होता तो उनकी उपासना क्यों करते? आपके समान सुखदेव के समान प्रचिति करें, आपके समान आत्माराम मुनियों के नयन में सब समय बसे हुए हैं। ब्रह्मा व्यास आदि कवियों के वाक्यों के द्वारा उनका निर्गुण भाव स्थापित होता है। स्वयं लक्ष्मी और रुक्मिणी उनके रूप से देह के से अलग नहीं कर सकते उनकी आंखों को, उनकी आंखें उनको देखने में लग जाती है, जैसे गोपियों का होता है। दूसरों की बात क्या, देवाधिदेव महादेव कृष्ण के शरीर में अत्यंत अनुरक्त थे, उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं कृष्ण का, वह गुणमय तनु कैसे हो सकता है? कृष्ण के अर्जुन के रथ पर बैठ करके उनको देख करके जितने लोग युद्ध में मारे जाते हैं सबकी मुक्ति हो रही है और अपने मरेंगे, ये कैसे संभव है? वे सगुण यदि होते तो निर्गुण आत्मारा मुनियों के हृदय में कैसे वो निर्मल हृदय में कैसे वो प्रकट होते, ये संभव पर नहीं। अतएव कृष्ण का अपार्थिव सब लोग के हितकारी कृष्ण का पार्थिव पदार्थ कुछ नहीं है, शरीर नहीं है, उनकी मृत्यु भी संभव नहीं है। उनका तनु ऐसा नहीं, फिर त्याग कैसे किया? तो ये एक श्लोक है, ब्रह्म शापो प्रशिष्टे स्वकुले जादवर सह प्रेयसी नेत्रा सर्वनेत्रानां तनु स कथम अत्यज। यहां तनु विशेषण है और उस श्लोक में जो प्रेयसी है वो विशेषण है अति प्रिय ना? तो विशेष्य पद तनु विशेषण हुआ प्रेयसी, उन्होंने विशेषण को ही प्रत्याग किया, देह को त्यागने किया, तनु ने त्याग किया, विशेषण त्याग किया। क्या मतलब? नहीं, जो दिख रहा था उसको अंतर्ध्यान कर दिया, बस यही इसका नाम क्या। बस उनके दृष्टि से लोचन से अंतर्ध्यान, इसलिए तनु को त्याग नहीं किया। बतला रहे जैसे है, यहां पर तनु त्याग का प्रसंग ही नहीं है, वो प्रियसा प्रियसी उसी को त्याग करने का है। कैसे उसको समझो, विप्र स्वीय विप्रत्व केमन कर या त्याग करें, एर बोली दे विप्र विप्रत्व का त्याग कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? यहां पर विप्रत्व त्याग नहीं बुझा समझा जाता। पथिक व्यक्ति एक कलसी जल लेकर के चलते चलते थक गया और भार वाहन करने में असमर्थ हो गया, तो उसने जल कलश को त्याग कर दिया। कलश सोने का था तो उसका पानी त्याग कर दिया, फेंक दिया, तो वो हल्का हो गया, कलसी लेकर के चले गए। आ रहा है समझना? ऐसे ही इस प्रकार से तनु त्याग, तनु में जो भाव है, लोग जो देख रहे थे उनको अपनी लीला, उसको त्याग किया, अर्थात लोक लोचन के अंतराल में कर दिया, पानी पड़ा अपने शरीर से, वो अंतर ध्यान। इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से जल मात्रा का त्याग समझा जाता है, कलसी त्याग की कोई बात नहीं, यहाँ पर उसी प्रकार विशेषण पदे पर त्याग, विशेषण माने प्रियसी, जो प्रिय था, क्या जिसको लोग देख रहे थे, जिसको यह शरीर प्रिय था, वो प्रिय का भाव को और दर्शन कर दिया, बस इसी का नाम है तन त्याग। इस चीज को पराशर और सनक ऋषि नहीं समझ सके, तो और लोगों की तो बात ही क्या है, उन्होंने भी अपने अपने ग्रंथ में संहिताओं में लिखा है, जो कृष्ण ने त्याग कर दिया उनका दाह संस्कार हुआ, और ऐसे महाभारत में तो ऐसे ही लिखा है। किंतु ये नहीं, अब हम कल इस विषय पर और विचार करेंगे, आज यहीं तक करेंगे, इसमें बहुत विशेष बातें हैं, अब कल बतलाएंगे। लो इसको, प्रसंगों को सुनने से जरा बाद कृष्ण को मारा, लोगों को अधिकांश संसार के लोगों को, गौड़ियों वैष्णवों को छोड़कर के अधिकांश लोगों को वो भी दिखलाते हैं दाह का स्थान, ये सब माया मोहित। बड़े बड़े साधु लोग संत लोग भी माया, हम लोग तो वहां जाते ही नहीं।
सो नाउ गुरुदेव रिसाइट वन श्लोक, ब्रह्म सापो को संस्कृत के सकुल यादव सब प्रिय सिंह सर्व नेत्राण तनु स कथम तजे। परीक्षित महाराज आस्किंग टू सुखदेव गोस्वामी दैट व्हेन इज ओन डायनेस्टी क्रश बाय ब्रह्म साप एंड हाउ भगवान give up his body. So now question arises, how Krishna became disappeared from this world? Because he had mentioned about give up his body. But we have heard from Srila Gurudev and other scriptures, deha dehi vidhanasti nesare vidyate kachit. There is no difference between Krishna's body and soul. Just like for ordinary beings, their soul and body is different. But for Krishna, but for Ishvara Tattva, this is not possible. their body and soul is same. There is no difference at all. Krishna is Vishuddha Satta, Chidananda. So there is no difference. So what he give up? If he is not give up his body, then why is mentioned here Tanutya? Why what he give up? What did he give up? Who they give example? One example. Just like someone holding one stick. He can give it up, then he give up the stick, not his body, not his himself.
ভালো করে বলো না, ভালো করে বলো, ও সমে বল জরা ঠিক সে বলো
মসাজ
হতা হ্যাঁ So that means Krishna is not Sagun, means he is not, he is beyond Satta Rajan Tamagun. Then Gurudev gave another point. In the battle of Mahabharata, who were dying by fortune's weapons, seeing Krishna, even they got liberation. So to see whom they got liberation, how he can die? It's not possible at all. So he never died. So why it mentioned here? Then in this world there is one word Prayasim. Prayasim is very near and dear. Here Tonu means body is noun, Vishesha, and Prayasim is Vishesha means adjective. So what is given? What was very near and dear to others? He disappeared from that form, from our own vision. Just like we will give an example. One passenger is walking, holding a golden pitcher on his head, full of water. After some time, he became tired. So he gave up the water, the pitcher became light. He never gave up the pitcher because it was golden. So he took the pitcher and went away. In the same way, Krishna never gave up his body, only which was very near and dear to others like Brahma and Shiva and all these things from this world. Disappeared, then home from this world and enter into Amramad Dharaka. This is the mystery of his disappeared first times.
Krishna Das, anything announcement?
Those who have not registered your names, please register your name very soon. We will have to manage buses and every boarding places and everything.
On Monday, the 25th, all the senior devotees, sannyasis, brahmacharis, they are invited to come in the afternoon in Shrimane's room or outside the room at 4:30.
When?
Monday afternoon.
Monday afternoon.
Thursday.
Oh, so one day before. I will be here.
But you will be Sunday you will be in Haridwar.
Yeah.
So please all come together. There will be a meeting how to organize parikrama so that